ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंद अध्याय 8, भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, श्लोक संख्या 42। श्री इंद्र उवाच, प्रत्यानितः परम भवता त्रायता नः स्वभागः दैत्य अक्रांतं हृदय कमलं तत्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियत इदं ओ नाथ अहो नाथ सुष्टुता ते मुक्ति तेषां न हि बहुमता नारसिंह अपरै किम्। इंद्र उवाच, प्रत्यानिता परम भवता तायता न स्वभागा प्रत्यानिता परम भवता तायता न स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलं तदगृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदि मद अहो नाथ सुश्रुतां ते मुक्तिहितेषां नहि बहुमता नारसिंहा परै किम्।
इन्द्र उवाच, स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, प्रत्यानितः पुनः वापस लौटाना है या लौटाना है, परमा हे परम पुरुष, भवता आपके द्वारा, त्रायता रक्षा किए जाकर, नह हम सौभागः यज्ञ का अंश, दैत्य आक्रांतम दैत्य से पीड़ित, हृदय कमलम अपने कमल रूपी हृदय, तत् तत् गृहम जो आपका वास्तविक धाम है, प्रत्याबोधि प्रकाशित किया जा चुका, कालग्रस्तम समय द्वारा कवलित, कियत तुच्छ नगण्य, इदम यह संसार, अहो हे नाथ स्वामी सुश्रुताम सेवा में लगे रहने वालों के लिए, भक्तों के लिए ते तुम्हारा मुक्ति ही भाव बंधन से मोक्ष, तेसाम उनका शुद्ध भक्तों का जो आपके सेवा में लगे हुए हैं, ना नहीं ही निसंदेह बहुमता बहुत आवश्यक समझा नारसिंह। हे नरसिंह देव अपरई किम अपरई किम अन्य किसी संपत्ति से क्या लाभ। अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर आप हमारे उद्धारक था रक्षक, आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को वास्तव में जो आपके हैं लौटाए हैं, क्योंकि असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, अतः आपके अस्थाई निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अहंकार दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया। हे प्रभु जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम अर्थ धर्म के विषय में क्या कहेगा। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं लेकिन वे भगवान के भक्त होते हैं और वैदिक आदर्शों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकश्यप के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में अवरोध होता था। जब हिरण्यकश्यप को मार डाला गया तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष राहत हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप द्वारा विचलित रहते थे। चूंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है। भक्त यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में सदा भगवान का सदैव चिंतन करना। श्रीमद् भगवत गीता 6:47 में कहते हैं भगवान, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतात् अंतरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां स्वामे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति में से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझमें निवास करता है वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है और सर्वोच्च है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त है किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छन्न रहते हैं। अतः जब हिरण्यकश्यप मर गया तो देवताओं को राहत हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी सुखी बन सकेंगे। ओम अज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन चक्षुर्जन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः यैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमो सुपुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्णं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णु पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाय जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की गुंजाइश है क्या माता जी लोग पिताजी लोग सब में? थोड़ा सा, बहुत से देवता लोग हैं बाहर खड़े हुए हैं, अंदर रहना चाहते हैं बिचारे, आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा कृपा कीजिए उन लोगों पर जो लेट लतीफा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, समय बड़ा कम है, बाद में आपको प्रसाद भी चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण बलराम के प्रांगण में बैठ करके श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदत्त, कृष्ण के द्वारा संचारित ज्ञान भागवत महापुराण के संबंध में आज सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वो भी कार्तिक महीने में। यह प्रसंग सातवां स्कंद बड़ा स्पेशल स्कंद है। दसवां स्कंद और सातवां स्कंद ये बड़ा स्पेशल स्कंद है। सातवें स्कंद में शुरू से अंत तक प्रहलाद महाराज के विषय में वार्ता की गई है और दसम स्कंद में शुरू से अंत तक भगवान कृष्ण के विषय में वार्ता की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना स्पेशल स्कंद है। अन्य जो स्कंद है उसमें कई राजाओं का कथा आ जाता है या कई भक्तों का कथा आ जाता है, भगवान के विभिन्न अवतारों का कथा आ जाता है, लेकिन ये सातवां स्कंद है ये रिजर्व स्कंद है। जैसे कभी कभी आप लोग यहाँ से ले बाजार रिक्शा में जाओ ना तो रिजर्व कर लेते हैं, कोई नहीं करना। वैसे ही कि अन्य किसी कथा नहीं प्रहलाद महाराज की प्रारंभ से कथा हुई है और अंत वही कथा है। और ये इसलिए है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है इस संबंध में। यह जो प्रसंग चल रहा है, अब भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव हो चुका है और जिस कारण से भगवान इस तरह धाम पर आए वह काम भी समाप्त हो गया। भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि। भगवान असुरराज हिरण्यकश्यप का वध कर चुके, वो भी भक्तों के कहने थे, उनके प्रार्थना थे। तदुपरांत भगवान का अब स्तुति किया जा रहा है। स्तुति उसी का किया जा सकता है जिसका कोई सम्मान है, जो कुछ किया है। तो भगवान कुछ किए हैं, भगवान बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ये जो स्तुति है प्रारंभ हुआ है ब्रह्मा जी से और अंत में विष्णु दूत तक ने स्तुति किया। ब्रह्मा जी और भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्मा जी और शिव ये अकेले लोग, तो ये लोग स्तुति किए। यह जो स्तुति है वह समस्त 33 कोटि देवताओं के विहार में देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग सुनेंगे जितने भी ऋषि लोग हैं सत्यलोक में निवास करने वाले, उन ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई है। उसके बाद पितर लोग से आए हुए लोग, पितरों के द्वारा स्तुति की गई है। उसके बाद सिद्ध लोग से प्राप्त सिद्धों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा, नागों के द्वारा, मनु के द्वारा, यक्ष के द्वारा, किम पुरुष के द्वारा, वैतालिका के द्वारा, किन्नर के द्वारा और अंततः विष्णु पार्षदों के द्वारा। तो सब लोग वहां पर इकट्ठे थे, सब लोग विटनेस किए। अब इस श्लोक में इंद्र के द्वारा देवताओं के विहार में इंद्र स्तुति किए हैं, तो उनके द्वारा किए गए स्तुति का वर्णन त्रिपाद सुखदेव गोस्वामी करता है। इंद्र इस श्लोक में इंद्र चार बातों के विषय में बतलाए हैं। स्व दुख आवेदन, अपने दुख का आवेदन कि कैसे हम लोग त्रस्त थे समस्त देवतागण हिरण्यकश्यप के अत्याचार से। उसके बाद बतलाए कि हे भगवान कैसे आप ही सबके रक्षक और आप ही सबके आत्मा में निवास करने वाले सर्वांतरात्मन है। और अंत में बताए कि समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले आप ही हैं। इंद्रम तुम सदुखम आवेदनम सर्वरक्षकम सर्वांतरात्मनम समस्त पुरुषार्थदम अस्तितो। इस प्रकार से भगवान का वे स्तुति। तो इन एक एक चीजों को हम लोग चलेंगे। पहला है स्वदुख आवेदना, अपने दुख का वे आवेदन। दुख का कारण क्या था? दुख का कारण था कि हिरण्यकश्यप ने मारपीट करके इन लोगों को भगा दिया था, इन लोगों का राज्य छीन लिया था। उतना ही नहीं, अपने नौकरी में इन लोगों को शरण दिया था, नौकरी में बहाली किया था। वायु देवता झाड़ू लगाते थे, इंद्र पानी लाते थे, क्या परिस्थिति थी। ये लोग राजा थे, स्वर्ग के राजा, और पानी लेकर के आए या अन्य तुच्छ कार्य करें, वो भी असुर के हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख था। शारीरिक दुख उतना नहीं था, खाना पीना मिलता था उन लोगों को, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन दुख मानसिक। शारीरिक दुख से निवारण हो सकता है, लेकिन मानसिक दुख बहुत सूक्ष्म होता है और बहुत भयावह होता है। ये अपमान कर दिया जाए, कहा जाता है वो अपमान मृत्यु के समान होता है। मैन हु ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। मृत्यु से भी कहीं खराब है अपमान, बल्कि मर जाना अच्छा है अपमानित होकर। हम आप समझ सकते हैं इंद्र पर कितना दुख हुआ, क्या ये लोग सहते होंगे। अब कहे अब थोड़ा सांस लिए, हे पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा, आपने हमारी रक्षा की इस असुर हिरण्यकश्यपु का वध करके। आपने हमारे जो यज्ञ भाव यज्ञ भाग है उसको आपने लौटाया। और वे कहते हैं कि ये सब आपके ही है। तो स्वदुख आवेदनम, प्रार्थना किए कि कैसे आपने के दुख से हम लोगों का रक्षा किया। और सर्व रक्षकम, क्योंकि आप सबकी रक्षा। इस संसार में कुछ नहीं हमारे रक्षक, और कोई रक्षक नहीं। माँ अपने बच्चों का, माँ बाप अपने बच्चों के रक्षक है, लेकिन माँ बाप के रहते भी बच्चे मर जाते हैं, माँ के गोद में बच्चे मर जाते हैं। दवा जो होता है, भागवतम वर्णन किया गया है, वो रोगी के रोग को दूर करने के लिए होता है, लेकिन कोरोना काल में कितने लोग मर गए दवा रहने के बावजूद भी। नाव जो होता है नदी को पार करने के लिए नौका होता है, लेकिन नौका भी उलट जाता है, लोग मर जाते हैं। तो वास्तविक रक्षक जो हैं वो कुछ नहीं है। ये LIC हमारा रक्षा नहीं करेगा। बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं और क्या क्या व्यवस्था करते हैं, ये सब कुछ भी हमारा रक्षा नहीं करेगा। यदि कोई रक्षा करेगा हम लोगों का तो ये है कृष्ण। और कृष्ण क्यों हम लोगों का रक्षा करेंगे? एक तो इसलिए कि हम उनके हैं, लेकिन विशेषतया जो भगवान का भजन करने लगता है, भगवान ही नहीं, भगवान की जितनी प्रणालियां हैं सब भक्तों का रक्षा करते हैं, सब लोग आ जाते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे अम्बरीश महाराज का, जब दुर्वासा मुनि उन्हें श्रापित करने के लिए तैयार हुए तो उनके पीछे सुदर्शन लग गए। श्राप आने से पहले ही सुदर्शन लग गए। तो भगवान अपने भक्तों का सब प्रकार से रक्षा करते हैं अपने अवयवों के साथ में। सुदर्शन रक्षा करते हैं, भगवान का गदा रक्षा करता है, और विभिन्न प्रकार के देवी देवता तो हैं ही रक्षा करने के लिए। तो वास्तविक रक्षक श्री कृष्ण है, इसलिए हम लोगों को अन्य सभी की तरफ से मुख मोड़ कर करके कृष्ण की तरफ मुख करना चाहिए। कृष्ण को एकांतिक प्रीति चाहिए, प्रेम करें लेकिन एकांतिक भाव से, तब कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। देवी देवता लोग की तरफ मुख कर करके कृष्ण का भजन करें, कहेंगे ठीक है उनसे करा लो पहले। धन संपत्ति के तरफ मुख कर करके रक्षा का प्रयास करेंगे, भगवान कहेंगे उनसे भी करा लो। सगे संबंधियों के तरफ मुख कर करके रक्षा का हम आशा करेंगे, भगवान करके भी कर लेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी अपने रक्षा के लिए सबसे पुकार सबको पुकारे दाम विष्णु को, गुरु द्रोण को, उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र को, पांडवों को, सब लोगों की तरफ देख रही थी। भगवान द्वारका में बड़े व्यग्र थे, परेशान थे भगवान, वे चाहते थे कि द्रौपदी का रक्षा करने मैं जाऊं। जब रुक्मिणी जी पूछी क्या बात है प्रभु, बात बहुत चिंतित लगते हैं, बड़े व्यग्र हैं, क्या बात मैं करूं क्या, हमारी भक्त द्रौपदी का आज चीरहरण हो रहा है, उसका लज्जा लुटा जा रहा है। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आप जाते क्यों नहीं हो, आप जल्दी जाओ। तो भगवान ने कहा ट्रैफिक जाम है, कल गोवर्धन से आदेश में देखा हूं कितना ट्रैफिक जाम है, ये ट्रैफिक जाम है, बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं रास्ते में, विषाम पितामह विष्णु गुरु द्रोण धृतराष्ट्र पांडव सब लोग लगे हुए हैं रास्ते में, तो रास्ता क्लियर होगा तो जाऊंगा। और जेव ही द्रौपदी द्वारकाधीश को पुकारी, सब ट्रैफिक क्लियर हो गया, तो भगवान ब्रह्म तुरंत चले गए। तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए हम भक्तों को कि हम लोग इस ट्रैफिक जाम मत करें। शिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजा करने जाओ, दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा जी का पूजा करने जाओ, अन्य देवी देवताओं के लिए कोई सोमवार का पूजा करो, मंगलवार का पूजा करो, अलग अलग दिन मारते रहोगे, इसका मतलब कि विश्वास नहीं है भगवान में। यदि भगवान में विश्वास रहेगा तब ट्रैफिक क्लियर होगा, अब तब भगवान बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो भगवान भक्तों के रक्षक हैं। इंद्र पर विपत्ति आई हुई है, इंद्र पर कभी एक बार विपत्ति आई, तो पहला बार नहीं है, कितने बार तो उनके मूर्खता से विपत्ति आई, जैसे कल का विपत्ति गोवर्धन पूजा था, लेकिन भगवान क्षमा कर दिए इंद्र को। ब्रह्मा जी और इंद्र ये दोनों ने अपराध किया था, लेकिन इंद्र को भगवान क्षमा कर दिए कि ब्रजवासियों का वो सेवा किए, और ब्रजवासियों का क्या सेवा किए थे, इतना बरसा बरसा है कि सब ब्रजवासी एक साथ आ गए, मिलाए, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अलग कर दिया, ग्वाल बालों को चुरा लिए थे ना, तो अलग कर दिए थे। तब भगवान इंद्र को जल्दी से माफ कर दिए। तो भगवान वास्तव में रक्षक हैं। इस श्लोक से यह सीखना चाहिए कि इंद्र कह तो रहे हैं लेकिन हम लोग कहते हैं हे परमम भवता त्रायता न, आपने हम लोगों का रक्षा किया, और प्रत्यानिता स्वभागा, प्रति आनिता जो ले चुका था हिरण्यकश्यपु उसको वध कर करके आप लाए और हम लोगों को हमारा भाग यज्ञ का भाग लौटा दिए। लेकिन ये सब भगवान आपके ही हैं, बात सही है। भगवान गीता में कहते हैं अहम ही सर्वज्ञानाम
भोक्ता च प्रभुरेम च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अत चवन्ति ते।
लोग पतित होते हैं संसार में,
क्यों पतित होते हैं?
क्योंकि तत्वतः इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ही समस्त यज्ञों के भुक्ता है।
भुक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
भगवान सब कुछ ही भुक्ता है। इंद्र इस बात को कह रहे हैं कि प्रत्यानिता स्वभागा, हे प्रभु आपने यज्ञ का भाव ला करके हमको दे दिया हिरण्यकश्यपु को मार कर करके,
लेकिन यह सब
आपका ही है, हम तो केवल पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं। जो बात इंद्र यहां पर कह रहे हैं इसी बात को भगवान ने नंद बाबा से कहा था कि इंद्र क्या करता है, क्या देता है, वो तो पोस्टमैन है, वो सब ऊपर से आता है। और तब तो इंद्र पूजा बंद हुआ ना, और वही बात इंद्र से कह रहे हैं कि आप ला करके दिए।
फिर दूसरा बात कहते हैं सर्व रक्षक,
भगवान आप ही रक्षक हैं।
दैत्य आक्रांत हृदय कमल तद गृहम प्रत्यबोधी,
हे भगवान
अब यह समझ में आ चुका।
क्या समझ में आ चुका?
हम लोग भयभीत थे दैत्य क्रांतम हिरण्यकश्यपु के द्वारा अत्याचार से,
हम लोग भयभीत थे।
सर्वरक्षम, आपने सबका रक्षा किया, आप सबके रक्षक हैं, आपने हमारा रक्षा किया हिरण्यकश्यपु को मार कर। हृदय कमलम तद गृहम, जो हृदय कमल, जो हृदय है वो आपका निवास स्थान है, लेकिन उस हृदय पर हिरण्यकश्यपु के द्वारा टेररिज करने से जो भय था वह भय हमारे हृदय पर अच्छा दिख गया था, वो भय हमारे हृदय पर आकर बैठा था। वह जो हृदय है वह आपका निवास स्थान है,
भगवान का निवास स्थान हमारा हृदय है। भगवान गीता में कहते हैं हृदयेषु अर्जुन, कैसे हो हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति,
जो हृदय है
तो भगवान का निवास है।
लेकिन इंद्र कहते हैं
कि उस हृदय पर भय का साम्राज्य हो गया,
कैसे? दैत्य आक्रांत हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से हम लोग भयभीत थे। जो भगवान सर्वात्मा है, सबके आत्मा है परमात्मा, इनका निवास स्थान हमारा हृदय है, हमारे हृदय पर किसका निवास स्थान है?
हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कौन हमारे हृदय पर विराजमान है।
हमारे हृदय पर विराजमान है काम,
ये ना,
काम मतलब निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम खान, इंद्रिय तृप्ति की कामना।
इंद्रिय तृप्ति की कई प्रकार की कामना होती है, एक ग्रॉस कामना होती है, एक सटल कामना होती है।
ग्रॉस कामना रोटी कपड़ा मकान, हाय हाय लगा हुआ है, फिर खत्म लगा हुआ है ना, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। और सटल कामना जो है नेम फेम ग्लोरी, ये बैठा हुआ है, जकड़ा हुआ है हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि हो चुका है। और इसी के बैठने के चलते हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। अब तक से हम भगवान के शरण में गए हैं क्यों नहीं, क्यों नहीं हम कृष्ण का भक्त से बने हुए हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है भगवान के लिए। भगवान सज्जन व्यक्ति हैं, परमम भवान, भगवान सज्जन व्यक्ति हैं, और सज्जन व्यक्ति बिना बुलाए नहीं जाता। दुर्जन लोग तो निर्लज होते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति जिसका बुलाने चल जाते हैं। जब भगवान को बुलाएंगे अपने हृदय में, स्थान देंगे, तब भगवान आएंगे, और उसके लिए अपने हृदय को साफ करना। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय को साफ करने का सरल तरीका बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम इंद्र कहते हैं तद गृहम, हे प्रभु ये हृदय आपका निवास स्थान है, लेकिन इस पर हिरण्यकश्यपु के प्रताड़ित किए जाने के बाद भय, हिरण्यकश्यपु का भय वह निवास स्थान हो गया था। कहते काल ग्रस्तम किय इदम अहो नाथ, हे नाथ आपने हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रतबोधित आपने लौटा दिया खोया हुआ राज्य, ईश्वर का राज्य पुनः प्राप्त हुआ, पुरुषार्थ दम आप सब कुछ देने वाले हैं, आपने लौटा दिया ईश्वर का राज्य प्राप्त हो चुका, हम खुश हैं, लेकिन स्वर्ग का राज जो है वह भी उन भक्तों के लिए जिनके लिए आप आए हुए हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज भी तुच्छ है। तो काल ग्रस्तम, इस संसार का कोई भी वस्तु है वो काल ग्रस्त है, देह है ना, तो देह काल ग्रस्त है। एक दिन मां के गर्भ से जन्म लेता है, तो वह बड़ा होता है, जवान होता है, बड़ा सुंदर लगता है या सुंदर लगती है, बाद में धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंततः खत्म हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कालो टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, मैं समय हूं जो सबको नष्ट करता है। काल ग्रस्तम, काल के द्वारा बंधे हुए, धन संपत्ति नेम फेम ग्लोरी जो कुछ भी है ये सब काल के द्वारा ग्रसित, काल के मुंह में है। हम लोग इस संसार में आनंद होना चाहते हैं, आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम काल के द्वारा ग्रसित हैं। हम लोगों का पोजीशन ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से कमल के फूल में भंवर ग्रसित, कमल के फूल में जो भ्रमर होता है वह आनंद से फूल के मधुरिमा का सुगंध का रस का वादन करता है। दिन भर शाम हो जाता है, निकलने का समय होता है, लेकिन निकलना नहीं चाहता है। कहते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कोई बात नहीं रात छा जाएगा, कल पुनः सुबह होगा, और इस प्रकार से सोच करके वो भ्रमर आनंद से उस कमल का जो पंखुड़ी है बंद हो रहा है, देख रहा है कि बंद हो रहा है, लेकिन कहता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अरे रात खत्म हो जाएगा फिर कल सुबह होगा, आनंद थोड़े बार बार मिलेगा, ले लेने दो आनंद, कौन देखा है कल क्या होने वाला है। तब तक से राजा का हाथी पानी पीने आया, और राजा का हाथी पानी पीता है और साथ में कमल को अपने सूंड से लपेट, और लपेट करके पैर के नीचे धुम गए काम से। हा हंत हंत नलनी, हाय हाय धिक्कार है, जो बेचारा सोच रहा था कि रात्रि खत्म हुआ कल सुबह आएगा और उसमें आनंद का अनुभूति कर रहा था लेकिन गया काम से। हम लोग उसी प्रकार के कमल के फूल में घिरे हुए भ्रमर हैं। हम लोग भक्त बन जाते हैं लेकिन भक्त बनने के बाद भी जुस चुकते हैं, क्या मंदिर से मिल सकता है, ये नहीं तो नेम फेम ग्लोरीज का जुस चुकते हैं, कितना दिन चूसोगे। समय रूपी हाथी के पैर के नीचे है। संसारिक लोग, मैं कहता हूं जब एक कान जब बाल पकना शुरू होता है तो कनपट्टी से पकता है, देखना आप लोग बाल पकने का मतलब कि अब सुनो अब बुढ़ापा आ गया तो नहीं कल फिर देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल, जैसे भ्रमर सोच रहा था कल करेंगे, पंखुड़ी बंद हो रहा था कि कल कल सुबह प्रभात होगा, जीवन ढल रहा है बुढ़ापे को हम प्राप्त करेंगे कल करेंगे, तब तक से खत्म हो जाते। काल ग्रस्तम कियद इदमहो नाथ, हे नाथ आपने लौटा तो दिया लेकिन सब कुछ काल के द्वारा संचालित है, काल के द्वारा व्यक्त है, लेकिन जो आपके भक्त लोग हैं वो लोग बड़े चतुर होते, जेई कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है बहुत चतुर होता है। तब अंतिम लाइन कहते हैं कि नाथ सुश्रुताम ते, जो आपके सेवा में लगे हुए हैं, जो आपके सेवा सुशीलता में लगे हुए हैं वो लोग सही नहीं चला, वो लोग ऐसे वस्तुओं का कामना नहीं करते। इंद्र कह रहे हैं कि हम कामी हैं, हम तो स्वर्ग के रास्ते खुश हो गए, भगवान सब कुछ देते हैं क्या नहीं देते हैं, भगवान सब कुछ देंगे लेकिन अपने को नहीं देंगे, इसलिए उनका नाम है नंद नंद, जो नहीं देते हैं नहीं देते हैं नहीं देते। भगवान सब कुछ देते हैं, अमेरिका का टिकट दे देंगे, रशियन लड़की शादी करना है तो भी दे देंगे, वृंदावन में घर बनाना है वो भी दे देंगे, नेम फेम ग्लोरी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने को नहीं देंगे। लेकिन जो कुछ भी नहीं चाहेगा केवल कृष्ण को ही चाहेगा, बॉम्बे में आजकल तो एयर कंडीशन गाड़ी है, पहले एयर कंडीशन नहीं था, मैं 86 बात कर रहा हूँ 70, तो वहां पर एक ग्रुप है, सब लोग समाज में रहते हैं, तो भिखमंगों का समाज है, रोड पर भीख मांगते हैं, ऐसा ऐसा चेहरा बना करके मांगते हैं, दिन में से लगा लें कहीं कोड़ फूटा उछला हाथ टूटा हुआ, हाँ ठीक है ये कर दें, मांगने का तरीका है, और वो तब तक से गाड़ी को पकड़े रहेंगे जब तक से आप कुछ दे ना दें, तो कहेंगे बाबू दे दो थोड़ा, हमारा बेटा भूखा है बच्चा भूखा है, और पता नहीं कहाँ से छोटा बच्चा भी लेकर आ जाते हैं, तो मांगने वाली स्त्री ऐसी मांगती है ऐसी मांगती है, लोग अपना पेड़ छुड़ाने के लिए देखते हैं, ये तो गाड़ी का बात चलते हुए भी लोग अपना पेड़ छुड़ाने के लिए लोग देखते हैं, तो वैसे ही भक्तों को उन भिखारियों के समान होना पड़ेगा, उन भिखारियों के समान। यदि हम भगवान को ही चाहेंगे तो भगवान अपने को दे सकते हैं। कब? जब हमें चाहत हो उनके लिए। ये सब कुछ आएगा, नेम फेम ग्लोरी सब आएगा। यदि हम इसी में फंस रहेंगे तो भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद् भक्तिर अहै तुति कोई। ये तीन बातें तो कही गई, लेकिन असली बात जो है वो अंतिम श्लोक में। इंद्र भक्तों का गुणानुवाद कर रहे हैं, कहते हैं सुश्रुताम ते, जो आपके सेवा में लगे हुए हैं हे प्रभु, उन लोगों के लिए मुक्ति तेसाम नहीं बहुमता नरसिंह परे किम। यहां स्वयं नरसिंह भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हे भगवान आप आए हैं, आप वैसे भक्तों के लिए आए हैं, उन भक्तों की प्रार्थना पर आए हैं जो कि संसार की कोई भक्त, अरे मुक्ति नहीं चाहते हैं तो परे किम, तो अन्य चीज चतुष्पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो कहना ही क्या, वो मुक्ति भी नहीं चाहती। और ये भक्त कौन कौन है, किन किन भक्तों के चलते नरसिंह भगवान आए यहां पर, ध्यान कीजिए आप। अब कोर्स सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यम विधातु निर्वित्त भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए। तो कौन कौन भक्त थे? प्रथम भक्त थे चतुष कुमार लोग, उन लोगों ने जय और विजय को प्राप्त किया था। दूसरे भक्त नारद जी, जिन्होंने इंद्र से कहा था, अरे मृत्यु कयाधु के ले जा रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है इसके गर्भ में कौन है, महान भक्त है जिसके चलते भगवान आएंगे, तो नारद जी के बात सत्य करने के लिए। तीसरा ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या किया हिरण्यकश्यपु, और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान से विभिन्न प्रकार का वर मांगा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, और ब्रह्मा जी तो बड़े बाप के बेटे हैं तो हाँ कह दिए, मस्ती कह दिए, क्या क्या वर नहीं मांगा। भगवान को कहना पड़ा कि ब्रह्मा जी थोड़ा सोच समझ कर वर दिया कीजिए, भगवान को वार्निंग देना पड़ा ब्रह्मा जी को कि शिव जी और ब्रह्मा जी ऐसे वर दे देते हैं। अब देखो कितना कठिन वर दे दिए थे, आकाश में न मरूं, पताल में न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, घर के अंदर न मरूं, घर के बाहर न। भगवान सब कुछ एडजस्ट करते 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 ऐसा लग रहा है बूम, कितना मुझे बच्चे लोग होते हैं ना उसको एडजस्ट करते हैं करते थे ना, करने वाले एक खेल होता है ना मिलाने वाला, भगवान कितना सब मिलाए सब कुछ और मिला करके और हिरण्यकश्यपु को मारे। तो ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए, और अंततः प्रहलाद महाराज के बात को सत्य करने। हिरण्यकश्यपु ने कहा, रे मूर्ख कहीं का, तू बकवास कर रहा है, मरने वाले ऐसा है उटपटांग बात करते रहते हैं, जब तू कह रहा है कि तुम्हारे भगवान सब जगह है तो क्या खंभे में क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं, है वहां पर चैलेंज किया, भगवान कहीं से आ सकते थे लेकिन हिरण्यकश्यपु ने चैलेंज किया, तो भगवान खंभे में कहा तो टेस्ट करना चाहिए। मूर्ख लोग टेस्ट करते हैं, उनको प्रमाण चाहिए। साधु लोग साधु शास्त्र और गुरु के बात पर विश्वास करते हैं, और मूर्खों को प्रमाण चाहिए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के नापी पोते हैं ना, इनके खानदान वाले हैं, इनके संप्रदाय वाले हैं, प्रमाण लोग मांगते हैं कृष्ण, ये पूरा संसार में आए प्रमाण लोग मांगते हैं। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया, जो प्रभुपाद जी स्पेशली बात कहते हैं, क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतः भक्तों का जीवन संकट में रहता है, भक्त जग नहीं कर सकते, अतः भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले जग का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। याद है बॉम्बे में जब परमिशन के लिए प्राप्त अप्लाई किया गया था बॉम्बे मंदिर बनाने के लिए, तो म्युनिसिपल कमिश्नर हरि नाम को न्यूसेंस कह दिया था, ये न्यूसेंस है, और प्रभुपाद जी स्लीपलेस हो गए दो तीन दिन तक। कई एक लेक्चर आप सुनोगे, आप पढ़ना कपिल भगवान का शिक्षा जो है ना, तो पूरा कथा हुआ था जुहू में टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिल, उसमें आप परपट में पढ़ना, कई एक जगह पर कई एक दिन तक प्रभुपाद जो जो भी मिलता था प्रभुपाद जी कहते थे देखो ये कैसा डिमोनियक गवर्नमेंट है कि हरि नाम को न्यूसेंस कह रहा है। प्रभुपाद जी को बहुत धक्का लगा था, न्यूसेंस कह रहा है, तो ये असुर लोग ये जग नहीं करने थे। पहले हम लोग हरि नाम करने के लिए बॉम्बे जा सकते थे, आजकल परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी 20-25 आदमी से ज्यादा नहीं, पहले हम 300 भक्त जाते थे हरिनाम करने के लिए, 200 भक्त जाते थे, और 15-20 जा सकते। मैं कोरोना काल का बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी बहुत ही जाते हैं कि वहां कोई नियम नहीं, पहले हम जाते थे डाउन टाउन, अब नहीं जा सकते, रथ यात्रा निकालना परमिशन, हरिनाम के लिए परमिशन। हाय रे भगवान, ये हिरण्यकश्यपु का राजा गया है, भजन नहीं। चलिए अंतिम जो श्लोक है उसका ही ग्रहण करना था, मुक्ति तेसाम नहीं बहुमता नारसिंह परे किं, ये जो नारसिंहम यहाँ शब्द आया हुआ है, हे नरसिंह भगवान आप ये जो है यह सुश्रुताम का पूरक है। क्या कहते हैं कि हे नाथ जो आपके भजन करने वाले जो भक्त लोग हैं वो लोग मुक्ति नहीं चाहते। जब पाला तो स्वर के राज को बतला दिए कि स्वर का राज कैसा है, काल ग्रस्त, ये काल से ग्रस्त है, और जो आपके सेवक हैं उनके लिए क्या है, स्वर का राज नहीं चाहते हैं न तो वे मुक्ति चाहते हैं। जब ये सब भी नहीं चाहते हैं तो अन्य चीज कृतार्थ है इनका तो कहना ही क्या। मैं दो श्लोक पढ़ कर करके, और दोनों श्लोक प्राय एक समान ही है, उस पर थोड़ा चर्चा कर करके विराम देंगे। यह श्लोक छठे स्कंद के 11वें अध्याय से है, श्लोक संख्या 25, वृत्रासुर का हृदय का आह्लाद। वृत्रासुर कहते हैं ये बात हो रहा है कि जो आपके भक्त हैं वो लोग स्वर का राज नहीं चाहते हैं, न तो मुक्ति चाहते हैं, तो फिर संसार का रोटी कपड़ा मकान का भी कहना ही क्या है, क्या चतुर्थ कहना ही क्या है। तो उसी को बतलाते हुए वृत्रासुर कहते हैं भक्त लोग क्या चाहते हैं, भक्तों क्या कामना होती है, ये बात। नाना कपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनार्भवम वा समंजसातय विरहय कांचे। न नाक पृष्ठम, हे प्रभु मुझे स्वर का राज नहीं चाहिए, न पारमेष्टम न च पारमेष्टम, न तो ब्रह्मा जी का उच्च पोजीशन चाहिए, न सार्वभौमम, न तो मैं मुकेश अंबानी बनना चाहता हूं यानी यहां का धन, न रसाधिपत्यम, न तो मैं लोअर प्लैनेट का अधिपति बनना चाहता हूं, न योग सिद्धि, मुझे अणिमा लघुमा जो सिद्धियां वो भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा न तुम्हें मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए तो भाई, तुम्हें चाहिए क्या बताओ तो क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहय कांचे, हे प्रभु मैं आपके विरह में रोता रहूं, बस यही इच्छा है। विरह में रोने का जो आनंद आता है, आनंद आता है विरह का आनंद, मिलन में छूटने का भय बना रहता है, लेकिन विरह में मिलने का आनंद आता है। हम मुलाकात होगी, हम मुलाकात होगी। अब इसी मिलन को कैसे मिलना चाहिए और उसमें प्रतीक्षा कैसे होती है, वृत्रासुर कहते हैं अजात पक्ष इव मातर खगा तन्यथा वस्तरा चुधारता प्रियं प्रियेव विशुदूत विष्णुषा मनोरविंदा दीक्षते त्वाम। ये आगे बताया गया है कैसा विरह हो मिलने का। तीन उदाहरण दिए हैं, एक छोटे पक्षी के बच्चों का। दिन भर पक्षी का बच्चा घोंसले में पना रहता है, शाम हो तो चुटी चुटी करके बाहर आता है, ये मार आई मार आई, ठीक नहीं है। क्योंकि जो पक्षी का होता है अपने मुंह से कुछ लाता है और बच्चे के मुंह में डाल देता है, कितना है ये भी ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण है असन्य काम असन्य था वह सतरा चुदार था, जो गाय का बछड़ा होता है उसको खुट्टे में बांध दो, दिन भर बेचारा बैठा रहेगा और शाम होते हुए खुट्टे की तरफ खड़ा। देखा कितने लोग बछड़ा देखे वहां दूर होते, बंदे वालों को पूछना पड़ता है, और खूटे में बंधा हुआ बछड़ा कितना देख रहे हैं, कितने लोग देखे हैं, चलो कुछ लोग तो हैं, माता जी नहीं देखो जाओ गौशाला में देखो। लेकिन तकलीफ है कि यहाँ की गाय यहीं रहती है, पहले गाय चरने बाहर जाती थी ना, तो शाम को बछड़े उठ करके और खूटे के चारों तरफ ब्रह्मांड का परिक्रमा करती है। क्यों कहते हैं सुधारता, सुधा पेट भरने के लिए। इसमें देखो थोड़ा अंतर है, गाय घास चरती है तब उसके अस्तन से दूध होता है और तरती है, तो ये भी इसमें भी कामना है, ये ठीक नहीं है। तीसरा उदाहरण देते हैं, कोई प्रेयसी है जिसका पति विदेश में है, अब वो आने वाला है तो उसके आगमन पर वो क्या क्या करेगी उसके लिए उसकी करेगी। तो समय हो गया, ने देखा दो और श्लोक था, नाग पत्नियों ने भी ऐसा ही प्रार्थना किया था और अंत चेतन महाप्रभु ने ही कहा धन जन नाही मांगी कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दिह मोरे कृष्ण कृपा करी न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामयी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे। तो इस वर्ष को समराइज करने में यही चार बातें, चार नहीं है तो चार बातें यहाँ पर कही गई है। पहला तो इंद्र भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि दुख से उनका निराकरण कराएं, हिरण्यकश्यप को मार कर करके भगवान सर के रक्षक हैं। दूसरा उन लोगों का यज्ञ का भाग जो प्राप्त नहीं होता था, भगवान उन लोगों को यज्ञ का भाग दिलाए। तीसरा भक्त के भगवान उन लोगों को मुक्त कराए। और चौथा बात बताया गया है ये तो है जो आपके शुद्ध भक्त होते हैं उन लोगों को स्वर्ग के राज ना का पृष्ठम स्वर्ग के राज्य की इच्छा नहीं होती है, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है, जो संसारिक पुरुषार्थों का तो कहना ही क्या है। तो चार बातें इस श्लोक में बतलाई गई है इंद्र के द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। महाराज कुछ बोलेंगे, समय नहीं है, यानी क्वेश्चन। अरे बैठो, प्रसाद है, काहे चिंता करते हो, आपसे पहले लोग लाइन में हैं। यस नाग पत्नियों ने क्या प्रार्थना किया था, वो भी वैसा ही प्रार्थना किया था जैसे वृत्रासुर ने, लेकिन लास्ट में ही था कि जैसे वृत्रासुर में कहा गया है कि भगवान के विरह में हम रहे, और वह कहते हैं वांछंत यत पाद रजम प्रपन्ना, हम तो आपके चरण कमलों के रज में निवास करते हैं। न ना कपृष्टम न सार्वभौम न पारमिष्टम नर्ताधिपत्यम न योग सिद्धि वांछंत यत पाद रजम प्रपन्ना, मैं हम लोग आपके चरण कमलों के रज में निवास करने करते हैं, शरण में। ऑल राइट, धन्यवाद। फिर बोलो बोलो बोलो, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, अंतिम प्रश्न है, हमारा पुराना भगत है, बोलो। देखो, मिलना और कामना करने में अंतर होता है। भगवान का सेवा करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, एयरप्लेन का टिकट मिलेगा प्रचार करने के लिए, फर्स्ट क्लास का छप्पन भोग प्रसाद मिलेगा, 10 लोग प्रणाम करने वाले मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कामना करना अलग है। मोस्ट इंपोर्टेंट कामना नहीं मिलनी चाहिए, ये पिशाची है कामना, कामना नहीं करनी चाहिए। मिलेगा, कामना करने में आसक्ति है और मिलने में अनासक्ति, हमने इच्छा नहीं किया था, मिला, बिना जो मांगे मिलता उसमें आनंद आता है, और मांग कर खींचातानी करोगे, अब देखो प्रसाद के लिए खींचातानी करोगे तो उसमें कहां एपेटाइट खत्म हो जाएगी, और कोई बुलाए कि भैया आइए प्रसाद खाइए, तो उसमें कुछ काम है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्री भगवान की जय।